किसी व्यक्ति से उसको घृणा नहीं होती, ना ही किसी, ना केवल व्यक्ति, किसी भी वस्तु से, किसी भी जीव से उसको घृणा नहीं होती। तो आप सोचिए, अभी सब भूल जाइए कि आप लोग ईश्वर की सब चर्चा कर रहे हैं, सब भूल जाइए, केवल सोचिए कि अगर हमारा हृदय घृणा रहित हो जाए, हम किसी से द्वेष नहीं करें, किसी से हमें घृणा नहीं हो, ईर्ष्या नहीं हो, कैसा होगा? बहुत लाइट फील करेंगे, वेरी गुड। क्योंकि कैरी करते हैं हम लोग, जिससे द्वेष करते वो व्यक्ति तो सुखी रहता है, हम लोग उसको कैरी करते हैं, और इसलिए हम लोग दुखी रहते हैं, तो बहुत लाइट फील करेंगे। क्यों? क्योंकि ना घृणा होगी, ना द्वेष होगा, और कभी हम किसी चीज से विचलित नहीं होंगे। विचलित नहीं होना मतलब हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, कोई किसी ने कुछ कह दिया, तीन दिन तक, चार दिन तक डिस्टर्ब रहते हैं, तो कभी कोई लंबा डिस्टर्ब रहते हैं, है ना? इस जगत में हमारी आशा यही होती है कि हर व्यक्ति हमसे अच्छा रहे, हमारे विरुद्ध कोई नहीं जाए, तब हमें यह जगत अच्छा लगता। लेकिन अगर कोई विरुद्ध जाने लगता है तो सारी मन में बात आने लगती, क्या फायदा इस जगत में रहने का, क्या फायदा भक्ति करने का, है ना? लोग बहुत समय से भक्ति कर रहे हैं मान लीजिए, और आपके जीवन में बहुत कुछ उतार चढ़ाव आ जाते हैं, आपको कोई कुछ कह देते हैं, आपके बिजनेस में तकलीफ आ जाती है, घर में तकलीफ आती है, आप सोच सकते क्या फायदा भक्ति करने का, कम से कम भक्ति करने से शांति तो होनी चाहिए। तो हमारा इस जगत को देखने का नजरिया क्या है, हम जब तक हमारे लिए अच्छा रहता है हमें जगत अच्छा लगता है, दुनिया के लिए खराब हो कोई बात नहीं। पेपर में पढ़ते हैं इतने लोगों की मृत्यु हो गई, कोई इफेक्ट होता है आपको? एक्सीडेंट में 10 लोग मारे गए, कोई इफेक्ट होता है? हम लोग पढ़ते रह गए, ठीक है। लेकिन वही अगर हमारे किसी व्यक्ति की हो जाए, कितना इफेक्ट हो जाता है, सही है? दूसरे की गाड़ी में डेंट लग जाता है, वो चिल्लाता है, किसी को गुस्सा कर, मान लो बच्चों ने खेलते खेलते किसी की गाड़ी में पत्थर मार दिया, नई कार में डेंट लग गया, आप आराम से लोगे? कोई बात नहीं यार, ठीक है, होता है। आप चला किसके बच्चे इतना समझाए नहीं, हटा क्यों, यहाँ खेल रहे थे, नई कार को डेंट लगा दिया। और वही अगर किसी दूसरे की कार को हो जाए तो आप जाकर उसको छोड़ रहे बच्चे, क्या हो गया ठीक है, राइट, दूसरे की कार। तो सारा ये जगत हम आत्म केंद्रित देखते, हर चीज को हम अपना केंद्र बनाते, यानी हर जगह से भी। तो यहाँ यही बताया गया है कि हर जगह को अपने से निकालकर भगवान को केंद्र बना दीजिए, न किसी से घृणा होगी, न किसी से द्वेष होगा, न क्रोध होगा, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है? तो ये चीज यहाँ पर समझाई जा रही है, ठीक है? इसके तात्पर्य तात्पर्य पढ़ लेंगे, समझाएंगे नहीं, समझाने के लिए यहाँ पर भारत ही है आस्ती, तो वो आप लोगों को समझाएंगे, ठीक है? हम केवल पढ़ेंगे। नीचे के स्तर का व्यक्ति का वर्णन किया गया है, वो क्या देखता है, मैं और भगवान, उसको और कुछ लेना देना नहीं, लोगों से लेना देना नहीं, लोगों से आचरण ठीक नहीं करता लेकिन भक्ति करता है, भगवान की पूजा बड़े अच्छे से करता है, लेकिन जब भक्तों से बात करने की बात आती है तो झगड़ा करता है, इससे बात नहीं करता। क्यों? उसको लगता है कि बस मैं और भगवान, भक्ति मतलब इतना ही है। लेकिन भक्ति मतलब क्या है? अगर आप भगवान से प्रेम करते हो तो उनके भक्तों से प्रेम करना चाहिए, और भक्तों से ही क्यों? सारी संतानें हैं भगवान की। भगवद गीता में भगवान ने बहुत स्पष्ट कहा है ना, अगर आप भगवद गीता पढ़े तो भगवान कहते हैं सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति वा तासां ब्रह्म महद योनिर् अहम् बीज प्रदापिता। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं मनुष्यों का पिता, कहीं कहा उन्होंने सर्व योनिषु, 84 लाख योनियों में जितने भी जीव हैं, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति वा तासां ब्रह्म महद योनिर् अहम् बीज प्रदापिता। कृष्ण बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि वे सबके पिता हैं, तो उसमें जानवर भी आ जाते हैं, उसमें पक्षी भी आ जाते हैं, उसमें चिकन मटर भी आ जाते हैं, हम लोग उनको काट कर खाते, बड़ा आनंद आता है, हम लोग काट कर खाते हैं, तो उसमें सब आ रहे हैं। तो केवल एक ये सिद्धांत समझना कि सारे जीव भगवान के अंश हैं, सारे जीव जीवों के पिता भगवान हैं, तो इसलिए प्रभुपाद समझाते हैं मनुष्य बड़े भाई की तरह है और अन्य सारे प्राणी छोटे भाई की तरह है। तो बड़े भाई का कर्तव्य है छोटे भाई की रक्षा करना, उसको मारना नहीं, और वो भी किस लिए? जिह्वा के स्वाद के लिए। इस बार किसी ने कहा कि जो लोग मांस खाते हैं ना उनको जाकर देखना चाहिए कि कैसे चिकन को काटा जाता है, वो तड़पता है, तो कभी कोई नहीं खाएगा, का लोग सामने देखकर भी खाते, देखते खड़े रहते हैं, उसके सामने काटा जाता है, बकरे को काटा जाता है, फिर भी खा लेते, कैसा पत्थर मिलता है सबका। तो इसलिए यहाँ पर ये कनिष्ठ अधिकारी है वो ये सोचता है वो भगवान को सर्वत्र नहीं देखता। भगवद गीता में क्या कहा गया है? विद्या, जो असली बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गृहस्थिनी शुनिचैव शुकाकेच पंडितः सदर्शिनः। जिसके अंदर विद्या है और विनय, विनय यानी नम्रता, विद्या से विनय आता है। ऐसा हर व्यक्ति जो अहंकारी है, चाहे कितना ही भौतिक दृष्टि से उसके पास विद्या हो, सही विद्या नहीं है। प्रभुपाद समझाते थे ना, पेड़ में फल लगा है तो झुकना चाहिए, सीधा खड़ा है पेड़ मतलब फल नहीं है। विद्या ले ली आपने, विद्या का असली फल क्या है? नम्रता। अगर नम्रता नहीं है, आपको अहंकार हो गया, कितने श्लोक बोलता हूं मैं, तो बोल सकते हैं आप लोगों को कुछ नहीं आता, सब अहंकार। और वैसे भी एक प्रचारक को कभी अहंकार नहीं होना चाहिए, जब ऊपर बैठ गए, हाथ पहना दिया, सारे लोग उनसे सुन रहे हैं, कितना अहंकार आ जाएगा। आप लोग बैठे सब यहाँ पर, सब आपको ही देख रहे हैं, आप जो कहे सुन रहे हैं, तो अहंकार आ जाता है कि देखो मैं ही सब जा। दरअसल प्रचार ये क्या है? करुणा का मूर्तिमान स्वरूप, इसे प्रचार कहते हैं। अगर हृदय में करुणा नहीं है आप कभी प्रचार नहीं कर सकते। प्रभुपाद ने इस सारे जगत में प्रचार क्यों किया? करुणा की। जब वो गए अमेरिका, उन्होंने देखा लड़के लड़कियां ये सब ऐसे चीजों में पड़े हैं, भोग कर रहे हैं, सोच रहे हैं जीवन का उद्देश्य यही, उनकी आंखों में आंसू आए देखकर कि ये भगवान का अंश है और भगवान से दूर रह रहा है और उसको आनंद मान रहा है, उसको जीवन मान रहा है। तो ये करुणा के कारण प्रभुपाद प्रचार कर सके, ये करुणा थी उनके हृदय, भक्ति थी उनके हृदय। तो केवल ज्ञान होने से कुछ नहीं होता, करुणा चाहिए प्रचार के लिए, हृदय में भक्ति चाहिए, शुद्धता चाहिए। तो इसलिए जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं वो बड़े नीचे स्तर पर है, वो केवल सोचते हैं मैं और भगवान, कुछ मुझे लेना देना नहीं आती लोगों से। उसके बाद आते हैं मध्यम अधिकारी। तो हम लोग ऐसे करेंगे, मध्यम अधिकारी इनका वर्णन थोड़े समय बाद में करेंगे, अब पहले सुनेंगे कि क्या होता है कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। तो हमारे शास्त्री ग्रुप से 3 लोगों ने ये बीड़ा उठाया है। कि आज आपको समझा कर ही रहेंगे कि क्या होता है कैसे और आज समझ कर बैठे। यस बहुत अच्छे। चलिए आइए, कौन आपको माइक दीजिए, माइक है और तो सबसे पहले कनिष्ठ अधिकारी का वर्णन होगा। थोड़ा यहाँ प्रभुपाद ने वर्णन किया तो क्या कनिष्ठ अधिकारी है माता जी समझाएंगे।
हरे कृष्ण।
आप खड़े होंगे आएंगे सबके सामने या ऐसे जैसे आपको सूट है ऐसे ही।
हरे कृष्ण।
प्रभु भी घूमना पड़ेगा। आप ऐसे घूम कर बैठ जाइए सब लोग
भगवान के चरण वैष्णव के चरण। हरे कृष्ण। प्रभु जी ने बहुत सुंदर समझा दिया है। ये तो प्रभु जी की कृपा है और अगर प्रभु जी की कृपा है कि हमें एक मौका देते हैं तो प्लीज गलती हो तो आप बीच में बोलिएगा,
लिस्ट बना के दे देंगे।
तो प्रभु जी ने यहाँ इस उपनिषद में कहा गया है पर और भी डिटेल में श्रीमद् भागवतम में बहुत इसका डिटेल में बताया गया है और 11th कैंटो सेकंड चैप्टर 47 श्लोक। तो पहले मैं एक श्लोक पढ़ती हूँ फिर मैं बताती हूँ इसके थोड़ा डिटेल में। अर्चयामेव हरये पूजाय श्रद्धायहते न तद्भक्तेषु चान्येषु सर्वत्रप्राप्यते स्मृतः। इसका अनुवाद है, जो भक्त मंदिर में अर्चा विग्रह की श्रद्धा पूर्वक पूजा में लगा रहता है किंतु अन्य भक्तों के प्रति या सामान्य जनता के प्रति उचित आचरण नहीं करता वो प्राकृत भक्त अर्थात भौतिकता वाले भक्त कहलाता है और निम्नतर पद पर स्थित माना जाता है। और इसको 3-4 पेज में पूरा डिटेल में दिया गया है श्रीमद् भागवत में। मैं कुछ पॉइंट लिख के लाई हूँ। तो परमेश्वर की अनुभूति की 3 अवस्थाएं होती है, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। इसमें श्री मध्वाचार्य की टीका है, स्टार्टिंग में कहते हैं कि कनिष्ठ अधिकारी की अनुभूति जो होती है वो निम्नतर स्तर पर होती है, जैसे उत्तम अधिकारी की होती है वैसे उसकी अनुभूति नहीं होती है। और कृष्ण कॉन्शियसनेस एक्चुअली ये पूरा अनुभूति पे है, ज्ञान अर्जित करना है पर आपने कितना उसको आत्मसात किया वो उस पर डिपेंड करता है। और सेकेंड पॉइंट में उन्होंने बताया ये भक्त मंदिर में तो अर्चा विग्रह को देखते हैं और उसकी पूजा करते हैं, जैसे प्रभु जी ने बताया स्टार्टिंग में मैं और मेरे भगवान और कोई नहीं, और फिर तो सर्वव्यापी भगवान को नहीं देखते कि हर जगह भगवान है। और ऐसी मनोवृत्ति भागवत में लिखा है, ऐसी मनोवृत्ति पाश्चात्य जगत में पाई जाती है कि जैसे कि मंदिर में है भगवान और फिर वो क्या करते घर पे और बाहर जो भी बात करते हैं वो करते हैं पर स्वच्छ होके शुद्ध होके वहाँ जाते हैं गिरजाघर और वहाँ प्रार्थना करते हैं और वो कहते हैं कि यदि हम वहाँ हमने प्रार्थना कर दी तो 6-7 दिन हमने जो पाप किए वो क्लियर हो गया, सोमवार से फिर से शुरू करते हैं। तो ये उनकी वृत्ति होती है कि बाहर कुछ भी कर लो, ये भागवत में स्पष्ट लिखा है। एंड देन जैसे कि कल भी प्रभु जी ने बताया कि भगवान के सामने झूठ नहीं बोलना है, बाहर जीना है यहाँ कॉल से बाहर जाओ फिर बोलो कोई प्रॉब्लम। आपने ऐसे समझाया था नहीं, आप फिर हमसे ही पूछा था, हो सकता है ना
रिकॉर्ड हो गया हमारे पर तो अच्छे
में नहीं हम काफी लोग हैं हम काफी लोग हैं ऐसे हमें नहीं देंगे। और फिर बताया वो अपनी निधान पूर्ण पूजा में गर्वित करता है, कौन कनिष्ठ अधिकारी, वो गर्वित करता है, कल्पना भी नहीं करता है कि उसके ऊपर भी कोई है, वो अपने आप को ही श्रेष्ठ मानता है, मैं जो कर रहा हूँ वो दी बेस्ट है। और फिर मिथ्या अहंकार वश वो भगवान के उच्च भक्तों की कभी कभी आलोचना भी करता है, कैसे कर रहे हैं कितने 15,000 से भक्ति में है तो समझ नहीं आता है इनको, मतलब वो पहले 1 साल से आए हैं तो वो जज करना शुरू कर देते हैं, क्यों ऐसा क्यों करते हैं, जज करना क्यों शुरू करते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं और क्यों श्रेष्ठ मानते हैं अपने आप, क्योंकि वो सबको भगवान का अंश नहीं मानते, वो शास्त्र नहीं पढ़ते, शास्त्र नहीं पढ़ते इसलिए उसमें फॉल्स ईगो आता है, वो फॉल्स ईगो की वजह से वो अपने आप को ही श्रेष्ठ मानते हैं और ये नहीं मानते कि सभी भगवान के आंसर हैं। एंड देन तथाकथित महान भौतिकतावादी जो पुरुष होते हैं उसकी योग्यता को देख के वो आकृष्ट होते हैं और वो मतलब कभी भी भक्ति ही छोड़ सकते हैं, उनको लगता है नहीं वो बेटर पथ है मैं उधर जाता हूँ। फिर माध्वाचार्य कहा है कि ऐसे व्यक्ति को कृष्ण में उसकी प्रारंभिक श्रद्धा के कारण भक्त माना जाता है, भक्त होते हैं वो, किंतु ये भक्ताधर्म अर्थात निम्नतर स्तर के भक्त होते हैं। एंड देन ये अन्य भक्तों का उचित आदर नहीं करते तो दूसरे सामान्य लोगों की क्या कहेंगे, वो तो उसको तुच्छ मानते हैं। हाँ सोलहवाला नहीं करते क्या है, क्या क्या कर क्या रहे, सोलह माला तो करना ही चाहिए, वो सोलह माला करते हैं थोड़े नियम का पालन करते हैं, देन आई एम द बेस्ट। और फिर जो भक्त के उच्च पद को हर एक के हृदय में, जो भगवान के उच्च पद, भगवान का जो उच्च पद है वो हर एक के हृदय में नहीं देखते, वो हर एक के हृदय में परमात्मा नहीं देखते क्योंकि उनको ज्ञान नहीं होता है, इसलिए वो कभी कभी बहुत अपराध कर बैठते हैं, उनके उनमें दूसरों को आदर भाव देने की प्रवृत्ति कम होती है। जो वो जो श्लोक है चैतन्य चैतन्य महाप्रभु का, अमानना मान देना कीर्तन्य सदा करें, कि दूसरों को हमें मान देना है पर वो हमेशा अपने मान के लिए रहता है कि मैंने कुछ अच्छा किया मैंने कुछ अच्छा बोला, तो इसे कहते हैं कनिष्ठ अधिकारी। ऐसे भक्त साधारण नियम का पालन करते हैं और कभी कभी परस्पर झगड़ा कर देते हैं। किस पॉइंट पे झगड़ा करते हैं, वो अपनी साधना में और भक्ति पद में यानी आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए हमेशा स्ट्रगल करते हैं, तो देख और स्ट्रगल, जैसे मैं तो बहुत बड़ी स्ट्रगल हूँ, जूझ ही गई हूँ अपने आप से, पता नहीं कहाँ पहुँचेंगी। वास्तव में ये भौतिकतावादी भक्त होते हैं आध्यात्मिक स्तर तक पहुँचने के लिए संघर्ष करते रहते हैं, तो इसे स्ट्रगल कहते हैं। थैंक यू सो मच, इतना ही आपका।
यही लग रहा है कि हमारी आवश्यकता नहीं है क्लास देने की, यहाँ पर कल से बंद किया जाएगा। ओके, सो कनिष्ठ अधिकारी का वर्णन हुआ और यहाँ आप देख सकते हैं कनिष्ठ अधिकारी इस तरह से परमेश्वर की उपस्थिति की ये पहली अवस्था है, तो कनिष्ठ अधिकारी है ये जो बताया गया, ये सारे यहाँ पर दिया गया है। कभी कभी मंदिर गिरजाघर या मस्जिद जाता है भगवान को केवल पूजा स्थल में ही देखता है, मंदिर ने बताया तो केवल पूजा स्थल में देखता है, एक बार मंत्री बता रहे थे कि दूसरे को कहता है सोलह माला नहीं करते हैं, ये हम लोगों के लिए कई मंदिरों में देखा जाता है, कोई नया भक्त नया व्यक्ति आया उसको पूछते क्या करते हो, मांस खाते हो शराब पीते हो पापी आदमी, वो बेचारा के बाद मंदिर ही नहीं आता है ना। नित्य कर्म करता है, कभी कभी परस्पर झगड़ भी पड़ते हैं, कभी कभी ज्यादातर एक तरह की भक्ति को दूसरे से श्रेष्ठ मानता है, माता जी बता रहे थे आध्यात्मिक प्रगति के आधार पर अलग अलग भक्तों में भेद नहीं कर पाता, सभी को समान देखता है, भौतिकवादी होता है प्रगति करने का प्रयास कर रहा होता है पर सफल नहीं होता, अपराध प्रगति में बाधक है तो ये अपराध कर बैठता है, सत्संग नहीं कर पाता ठीक से और असत्संग में प्रवृत्त हो जाता है, ये कनिष्ठ भक्त के कुछ लक्षण है। और फिर मध्यम भक्त के लक्षण ये हैं, लेकिन ये आपको बाद में दिखाएंगे, जैसे मैं किसी अभी आ रहा है मध्यम भक्त आप उन्हें आज
जब भक्तों का समय होता है, प्रॉपर सुनता है, तब वो मध्यम अधिकारी के स्तर तक उन्नत होता है। तो मध्यम अधिकारी जो होता है वो उसके हृदय में अपार करुणा होती है और वो चाहता है कि सब लोगों को जो भरत सत्य के प्रति अज्ञान है, अबोध है, उनको मैं इसके विषय में बताऊं। तो वो एक प्रचारक होता है और वो प्रचारक भी इस तरह का होता है कि वो भेद कर पाता है, जैसे कि एक डॉक्टर प्रचारक की भूमिका समाज में एक डॉक्टर से जैसी होती है। अगर डॉक्टर बीमारी को डायग्नोज कर दी है तो भी उसे ये पता होना चाहिए कि ये बीमारी किस स्तर की है और किस समय पे उसको कौन सी दवाई देने की जरूरत है। तो इस प्रकार से मध्यम अधिकारी को पता है कि कौन किस अवस्था में है, चेतना के किस स्तर पे है और उसको किस तरह से प्रचार करने की जरूरत है। जैसे नारद मुनि थे, उन्होंने किस प्रकार से जो वो था मृगारी जो एक हंटर था उसको कितना निम्नतम अवस्था में था, लेकिन नारद मुनि के संग से वो बहुत ऊंची वैष्णव अवस्था को प्राप्त हुआ। तो जो मध्यम अधिकारी होता है उसका गुरु और शास्त्रों पे अधिक विश्वास होता है और शास्त्रों के सिद्धांतों के प्रति वो पूर्णतः अवगत होता है और न केवल खुद जानता है बल्कि दूसरों को भी कृष्ण भक्ति में आश्वस्त कर सकता है। और उसका जो ये वो अंतर कर पाता है उसके लिए जो मेन मध्यम अधिकारी को डिफाइन किया गया है उसके लिए है ईश्वरे तत् अधीनेषु वारिशेषु ऋषसु च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति समर्थमा। कि जो समझता है कि ईश्वर कौन है, अच्छी तरह से जानता है कि ईश्वर कौन है, उनके भक्त कौन है और अबोध व्यक्ति कौन है, चाहे वो भक्त हो या अभक्त हो, लेकिन अगर वो अबोध है तो उनके प्रति वो गलत व्यवहार करता है और जो द्वेषी जन है उनका वो पूर्णतया निषेध करता है। तो जैसा हमने डिस्कस किया कि वो डॉक्टर होता है तो भगवान के प्रति उसका प्रेम का भाव होता है, क्योंकि वो भगवान को अच्छे से जानता है कि भगवान की स्थिति क्या है और उसकी खुद की स्थिति क्या है। He knows his own position also well. तो उसको पता है कि वो भगवान का दास है और भगवान सबके परम पिता होने के नाते सबके प्रति करुणा से हमेशा अभिभूत रहते हैं और चाहते हैं कि सब जीव उनके पास वापस आए। तो वो भगवान की स्थिति को जानता है, अपनी स्थिति को जानता है और भगवान की मदद करना चाहता है उनके इस मिशन के अंतर्गत, तो इसलिए उसे ये भेद करना जरूरी है। तो वो जो भक्त होते हैं उनके प्रति मैत्री भाव रखता है और उसे मिलकर बहुत प्रसन्न होता है। उसमें भी उसमें चार तरह की बुद्धि होती है, वो इच्छा बुद्धि बुद्धि उसका मेरा क्वालिफिकेशन भी नहीं है। और उसके बाद वो जो बारी शेष जो अबोध लोग होते हैं उनके प्रति वो बहुत ही उदार होता है और उनको वो कृष्ण भावना में लाने के लिए पूर्ण प्रयत्न करता है। और जो द्वेषी जन होते हैं जिनको कृष्ण के लिए नाम सुनने से ही इरिटेशन होने लगती है, जो असहज हो जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल है हिरण्यकशिपु। प्रहलाद महाराज तो 5 साल के ही थे लेकिन जैसे ही वो विष्णु का नाम लेते थे हिरण्यकशिपु को क्रोध आ जाता है। तो इस तरह के लोगों से वो बचता है क्योंकि वो जानता है कि इनकी बीमारी लाइलाज है और इन पर इनको जवाब देना ही ठीक है, डॉक्टर के रूप में इनके ऊपर डायग्नोस करने से कोई फायदा नहीं है। उसके लिए उसका जो जीवन है वो इस तरह से व्यवस्थित होता है कि उसकी हर चेष्टा कृष्ण भक्ति के अनुकूल होती है। उसने अपने लाइफ को इस तरह से अरेंज किया हुआ होता है, हमारे जैसे नहीं कि कोई बात नहीं कहीं से भी गए खा लिया कुछ भी। हम लोग हमेशा कृष्ण भक्ति के अनुकूल चेष्टा नहीं है, डांस देखने भी चले गए और मूवी भी चले गए तो कुछ भी करते हैं, हम किसी भी संघ में चले जाते हैं, समटाइम्स हम समझते हैं कि वी नीड अ ब्रेक। लेकिन जो मध्यम अधिकारी होता है वो पूर्णतया कृष्ण भक्ति के प्रति ही डेडिकेटेड होता है और वो वही कार्य करता है जो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए आवश्यक है। उसमें वो जो जीता है उसको ना तो मुक्ति की इच्छा है और ना ही लंबे लंबे जीवन की इच्छा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो सिर्फ भक्ति को मैच्योर करने के लिए नहीं, भक्ति की परिपक्व अवस्था को प्राप्त करने के लिए और उसमें तीव्रता लाने के लिए जीता है। वो चाहता है कि उसकी भक्ति अपने चरम स्तर पर पहुंच जाए, उसका सिर्फ यही लक्ष्य होता है, इसीलिए वो जीता है और दूसरों पर कृपा करना चाहता है, यही उसके जीवन का उद्देश्य होता है। और वो भगवत इच्छा से पूर्णतया समर्पित होता है भगवत इच्छा के प्रति। वो जानता है कि उसके जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है वो सब भगवत इच्छा से ही हो रहा है, इसलिए भगवान की इच्छा के से स्वतंत्र उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती। तो प्रभु जी है तो और बहुत कुछ, लेकिन आई एम फीलिंग सो नर्वस, आई कांट स्पीक एनीमोर, दैट्स व्हाई।
इतना सारा तो हमें भी नहीं पता था देवती का, थैंक यू बताने के लिए। रिकॉर्डिंग है ना, बाद में सुनेंगे पॉइंट्स भी। ओके, सो मध्यम अधिकारी का यहाँ वर्णन किया गया परमेश्वर की उपस्थिति की दूसरी अवस्था है भगवान को देखने की, चार श्रेणियों के बीच अंतर कर पाता है। जो श्लोक बताया, भगवान की पूजा करता है, भक्तों से नैतिक स्थापित करता है, ईश्वर को ध्यान न दीजिएगा स्थापित करता है, नास्तिकों से दूर रहता है और अवधों के प्रति करुणा करता है। उसका परिणाम क्या होता है, वो स्थिर रहता है, अपराधों से बचा रहता है, सत्संग का लाभ उठाता है और जल्दी प्रगति करता है तथा कृष्ण तथा गुरु के उद्देश्य में उपयोगी होता है। ठीक है, तो अभी मध्यम हो गए, अब सबसे अच्छी चीज जो आप सब हैं, आप सब का वर्णन लगाने वाला है, जल्दी जल्दी
शास्त्र और तर्क में निपुण है। शिष्य प्रभुपाद ने
शुक्रपाद हर किसी के साथ चर्चा कर सकते हैं, जो शास्त्र में कृष्ण ही भगवान है इसको साबित करते हैं। और निर्भय है, हम लोग आज कोई कहते हम सच नहीं कर पाते हैं। कोई किसी प्रभु जी यहाँ कितने क्वेश्चन पूछते हैं, हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या आंसर दें। जानते हैं कृष्ण भगवान है, समझते हैं, लेकिन उसको बता नहीं पाते। जो उत्तम अधिकारी है वो इसको पूर्ण रूप से बता पाता है कि कैसे कृष्ण ही भगवान है, कैसे कृष्ण की सेवा ही सबसे उत्तम है, भक्ति सबसे उत्तम है। अरे मुझे जो बहुत सुंदर लग रहा था, लोहा के यावत स्पर्श प्रेम नहीं करे तावत स्पर्श मणि के चीते ताप पर। जैसे पारस पत्थर है, पारस पत्थर जब किसी साधारण लोहे को छूता है तो सोना बन जाता है, तो ये उसकी परीक्षा है। कैसे जज करेंगे पारस पत्थर क्या है, जब लोहे को छुएगा और सोना बनेगा तब। ऐसे उत्तम भक्त का परीक्षा क्या है, जब वो नीचे से नीचे योनि में गिरे हुए पापमय जो पापी जीवन जी रहे ऐसे जीवों का भी उद्धार कर देता है, उनको भी भक्त बना देता है, अपने जैसा बना देता है। जैसे प्रभुपाद ने अभी बताया कि जो रिपीस थे सब वहाँ पर उन सबको हैप्पी बनाते हैं, तो प्रभुपाद ये कर सकते थे क्योंकि उत्तम अधिकारी थे। उन्होंने कैसा जीवन जी, अभी भी हम अपना भी देखें प्रैक्टिकली तो हमारी लाइफ क्या थी, 6-7 साल मुझे भी जुड़े हुए क्या जीवन से पहले जी रहे थे, पशु जैसा जीवन जी रहे थे, लेकिन प्रभुपाद की कृपा से आज हम भक्ति को समझ पा रहे हैं, भक्ति कर वैष्णव की कृपा से ही संभव होता है। और दर्शन में मुख्य आई से कृष्ण नाम कहा जानिए तुम्हें वैष्णव करना, तो जिनके दर्शन मात्र से कृष्ण का स्मरण हो जाता है वो उत्तम अधिकारी है। उनको देख कर ही हमें लगता है कि भगवान की याद आ जाती है, तो वो उसको उत्तम अधिकारी कहा जाता है। सर्व महागुण गण वैष्णव शरीर कृष्ण भक्त कृष्ण गुण सकल संचार, सारे गुण जितने भी गुण है वो सारे उसके अंदर होते हैं। गीता में भी कहा गया कि जो उत्तम भक्त है उसके अंदर देवताओं के गुण भी आ जाते हैं और भगवान के गुण भी उसके अंदर होते हैं। प्रभु जी बताते हैं कि जैसे भक्ति देने की शक्ति भी भगवान से ज्यादा भक्त में होती है, क्योंकि भगवान का संग करते हैं और मैनेज नो बाय द कंपनी कीप्स, तो उनका एसोसिएशन ही कृष्ण से रिलेटेड है। कृष्ण का स्मरण करते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं, तो कृष्ण की सारी चीजें उनके अंदर आ जाती है। हम बोलते जैसा संग वैसा धर्म, तो वो संग ही हमेशा कृष्ण कथा कृष्ण नाम का लेते हैं, तो उनके अंदर वही सब चीजें आती है, वही क्वालिटी उनके अंदर भी आ जाती है। जैसे उनका जीवन ही भगवान का कहते हैं भगवान की सेवा है, इसको वैसे समझ सकते हैं कि रूप गोस्वामी कहते हैं कि भगवान की कथाओं के बिना रह नहीं सकते। भगवान का नाम इतना मीठा है कि करोड़ों कान और करोड़ों जीवों में मिल जाए तो भी उसका उसको रहनिश नहीं कर सकते, इतना ज्यादा भगवान का नाम मीठा है। हम तो सोना माला कैसे कर रहे हैं, एक बार निपट जाए और माले जल को साइड पर रख दें, वो नाम हमें पीछा नहीं लग रहा, लेकिन जो उत्तम अधिकारी है उसको भगवान के नाम के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। तो गांधी जी के तीन बंदर का एग्जाम्पल देते हैं, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, लेकिन उत्तम भक्त क्या करता है, कृष्ण के बारे में ही बोलता है, कृष्ण के बारे में ही सोचता है और कृष्ण को हर जगह देखता है। तो हमें ये सीखना है कि सेंसेस को रोक नहीं सकते, लेकिन उनको कृष्ण की सेवा में लगाना है, जो भी भगवान ने दिया उसको कृष्ण की सेवा में बेस्ट रूप से लगाना है।
आगे बढ़िए, हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, पूरा तात्पर्य कंप्लीट कर लेते हैं, समझ चुके हैं, उस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो हम लोगों ने पढ़ा है, जो प्रभुपाद ने लिखा है उसको हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं, कृपया आप लोग पढ़िए।
जी हाँ सर,
यहाँ पढ़ रहे हैं।
जिन्हें साक्षात्कार की दूसरे अवस्था प्राप्त हो चुकी होती है वे मध्यम अधिकारी कहलाते हैं। वे लगभग 4 श्रेणियों के व्यक्तियों के बीच अंतर को मानने वाले होते हैं, एक गजेंद्र, दो भगवत भक्त, तीन वे अभक्त जन जिन भगवान का कोई ज्ञान नहीं है, और 4 नास्तिक जो भगवान को श्रद्धा नहीं रखते और भक्ति करने वालों से घृणा करते हैं। मध्यम अधिकारी इन 4 श्रेणियों के मनुष्य के प्रति पृथक पृथक प्रकार से श्रद्धा करता है। वह भगवान का प्रेम के पात्र मानकर उनकी पूजा करता है और भक्ति करने वालों से मैत्री स्थापित करता है। वह भगवत के हृदय में सुप्त भगवत प्रेम को जगाने का प्रयास करता है, किंतु वह नास्तिक के पास नहीं जाता जो भगवान के नाम से ही घृणा करते हैं।
आगे अपने अधिकारी को
हरे कृष्ण। मध्यम अधिकारी के ऊपर उत्तम अधिकारी होता है जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर से संबंधित देखता है। ऐसा वह नास्तिक तथा आस्तिक में भेदभाव नहीं करता, अपितु हर एक को ईश्वर के अंश के रूप में देखता है। वह जानता है कि एक विद्वान ब्राह्मण तथा गली के कुत्ते में कोई बड़ा अंतर नहीं होता, क्योंकि दोनों ही भगवान के अंश हैं। यद्यपि वे अपने विगत जन्मों के भिन्न भिन्न कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न देह धारण किए हैं, वह देखता है कि परमेश्वर के अंश रूप ब्राह्मण ने भगवान द्वारा प्रदत्त अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है और कुत्ता अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होकर कुत्ते के शरीर में बद्ध है। ब्राह्मण तथा कुत्ते के अपने अपने कार्यों का विचार किए बिना उत्तम अधिकारी दोनों का कल्याण करने का प्रयास करता है। ऐसा विद्वान भक्त भौतिक शरीरों द्वारा भ्रांत नहीं होता, अपितु उन जीवों के आंतरिक आध्यात्मिक स्फुलिंग से आकर्षित होता है। जो लोग एक रूपता या मित्रता के भाव का
देख सके, जो सारे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है कि सब जगह भगवान को देखना ये होगा, तो इससे क्या लाभ होता है? भगवद गीता में भगवान बताते हैं, योमा पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं प्रणश्यामि सच मेन प्रणश्यति। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे सब जगह देखता है, यो माम पश्यति सर्वत्र, पश्यति यानी देखना, माम यानी मुझे, जियो यानी जो, तो यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति और सबको मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी भी अदृश्य नहीं होता, हमेशा उसके सामने रहता हूँ। तो उत्तम भक्त क्यों भगवान को, भगवान के सबसे निकट है, क्योंकि वो सब में भगवान को देखता है। केवल इस दृष्टि को उत्पन्न करने से हम भगवान का संग कर सकते हैं।
जो लोग एक रूपता या मित्रता के भाव का अतिक्रमण करके उत्तम अधिकारी का अनुकरण करते हैं किंतु देहात्म बुद्धि के स्तर पर आचरण करते हैं, वे वास्तव में झूठे परोपकारी हैं। विश्व बंधुत्व की धारणा उत्तम अधिकारी से सीखनी चाहिए, न कि किसी ऐसे मूर्ख व्यक्ति से जो आत्मा या भगवान के परमात्मा के रूप में विस्तार को भी ठीक से नहीं जानता, जो सर्वत्र निवास करते हैं।
तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उत्तम अधिकारी का वर्णन क्या है, सबको समान देखता है इत्यादि, लेकिन किस आधार पर? तो यहाँ दिया गया कई लोग होते हैं जो केवल उत्तम अधिकारी की एक नकल करते हैं, उत्तम अधिकारी के रूप में हम हैं, या फिर ऐसे कार्य करने का प्रयास करते हैं, जैसे यहाँ पर प्रभुपाद ने शब्द इस्तेमाल किया यूनिवर्सल ब्रदरहुड, क्या हिंदी में कहते हैं, विश्व बंधुता। तो सारे जगत को हम एक करना चाहते हैं, अगर कोई सारे जगत को एक करना चाहता है तो उसको एक ही सिद्धांत सीख लेना है कि कृष्ण सबके पिता है, अपने आप सारे बंधु हो गए, है ना, कोई करने की जरूरत है। लेकिन यही नहीं सीख कर, इसको अलग रख कर अगर हम सारी दुनिया को साथ में लाने का प्रयास कर रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। यूनाइटेड नेशंस यूनाइट करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन केवल झंडे बढ़ रहे हैं, हर साल देश बढ़ रहे हैं, यूनाइटेड मतलब कम होने चाहिए, सब एक होने चाहिए। तो इसीलिए ये जो हमारा प्रयास जगत का है, बहुत अच्छा प्रयास है कि हम एकता लाना चाहते, लेकिन उस एकता को लाने का मार्ग सही नहीं है क्योंकि हम भगवान को निकाल देना चाहते हैं। बहुत सरल है, प्रभुपाद एक उदाहरण दिया करते थे, एक तालाब है उसमें आप एक पत्थर फेंकिए तो क्या होता है, हम लोग बचपन में करते थे ना, आप लोग को याद है, पत्थर फेंकते थे ऐसे ऐसे उसके सर्कल उस बदले जाते थे। तो अगर एक पत्थर फेंका है तो हम देखते थे कि एक सर्कल दूसरा तीसरा बढ़ता जाता था, लेकिन कभी भी एक सर्कल दूसरे से टकराता नहीं था, होते जाते। वहीं आप दो तीन पत्थर फेंक दीजिए तो हर एक सर्कल एक दूसरे से टकराने लगता है। ये विश्व बंधुत्व का मूल आधार होना चाहिए कि अगर पत्थर एक ही है तो पानी में जितने भी वो सर्कल्स आएंगे वो चाहे कितना ही बढ़ते जाए लेकिन एक दूसरे से क्लैश नहीं होंगे। हमारे जीवन का केंद्र भगवान है तो चाहे जितना ही विश्व में प्रगति होती जाए कभी कष्ट तकलीफें नहीं आएंगी, लेकिन जब केंद्र एक नहीं है तो झगड़े होंगे, क्लैशेस, आपस में भाईचारा नहीं होगा। तो सच्चा बंधुत्व तब आ सकता है जब हम सब माने कि भगवान एक है, अलग अलग नामों से जाने जाते, जैसे पानी है ना, पानी एक ही है, अलग अलग नामों से जाना जाता है, कोई कहता है वाटर, कोई कहता है जल, कोई कहता है अग्नि, कोई कहता है नील, कोई कहता है तो अलग अलग नाम से लेकिन उससे पानी बदल जाता है। इसी तरह हम भगवान को अलग अलग नामों से पुकार सकते हैं, कोई कृष्ण कह सकता है, कोई अल्लाह कह सकता है, कोई यहोवा कह सकता है, लेकिन उससे भगवान बदलते नहीं। इस सिद्धांत को समझ लें तो यूनिवर्सल ब्रदर उठाएगा, नहीं तो हम केवल कहते रहे कि मेरा पानी आपके वाटर से अच्छा है, मेरा भगवान आपके भगवान से अच्छा है, ये मतलब है ना कहने का, भगवान तो एक ही है, फिर आप कैसे कह सकते हो कि मेरा भगवान आपके भगवान से अच्छा है। अब यही कहते हैं मेरा पानी आपके वाटर से H2O से अच्छा है, आपके H2O से अच्छा है, तो मूर्खता है, पानी तो पानी है। तो वह इसी तरह भगवान एक ही है, जब उन भगवान को सर्व आकर्षक के रूप में देखा जाता है तो कृष्ण कहलाते हैं, सर्वशक्तिशाली के रूप में देखा जाता है तो अल्लाह कहलाते हैं, अल्लाह का मतलब है ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिशाली। तो भगवान एक है, अगर ये सिद्धांत हम जान लें तो क्या हम झगड़ा करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, एक दूसरे को क्या जिहाद करेंगे घर को स्थापना करने के लिए, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, और इसका अर्थ ये भी नहीं है कि ना मंदिर बनने चाहिए, मंदिर मस्जिद बननी चाहिए, तोड़ना चाहिए, ये भी नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कह रहे कि मंदिर नहीं बनाने चाहिए किसी को, मस्जिद इस मंदिर बनने चाहिए, भगवान के तो जितने मंदिर बने उतना अच्छा, मंदिरों की स्थापना होनी चाहिए, लेकिन हमें समझना चाहिए कि हर स्थान भगवान का स्थान है, उसको आदर सम्मान देना सीखना चाहिए। तो भगवान एक है, अगर इसको हम जान लें अपने आप भाईचारा आ जाए। हमने कल कहा था कहने के बाद भी भगवान हमारे इस वाक्य को कभी झूठा नहीं करते, बाकी सारे वाक्यों को ध्यान नहीं देते, ये वाक्य को भी झूठा नहीं करते। ठीक है, तो जो लोग यहाँ पर बताया गया है कि जो लोग भगवान जो लोग उत्तम अधिकारी का केवल नकल करते हैं तो एक झूठा विश्व बंधुत्व की भावना लाते हैं, शरीर की सेवा करते हैं आत्मा की सेवा नहीं करते, झूठा परोपकार करते हैं। क्यों झूठा परोपकार है, क्योंकि केवल आप उसके शरीर शरीर की कामना कर रहे हो, उसकी सार कर रहे हो, लेकिन आगे क्या, व्यक्ति को हम कुछ खाने को दे दें कल फिर भूखा रहेगा, लेकिन अगर हम उसको ऐसी जगह ले आए जहाँ उसको जीवन भर खाना मिल सकता है वो सच्चा परोपकार है। और अगर हमने खाना इत्यादि दे भी दिया क्या व्यक्ति दुखों से दूर चला जाएगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से दूर चला जाएगा, मरना पड़ेगा ना, कष्ट आएंगे जीवन में, तो उसको एक ऐसा जीवन प्रदान करना जहां उसको न जन्म हो न मृत्यु हो न व्याधि हो कोई कष्ट ना, ये सच्चा परोपकार है। तो ऐसा परोपकार करने वाले जो नहीं करते हैं सब वे नकल कर रहे हैं, और उनको कोई आध्यात्मिक जगत की कामना नहीं है ना ही आध्यात्मिक जगत का ज्ञान है, और केवल नाम कमाने के लिए या धन कमाने के लिए करते। कई संस्थाएं हैं जो सोशल वर्क कर रही है लेकिन उनका उद्देश्य क्या है, फंड्स आते रहने चाहिए, पॉपुलैरिटी है, फंड्स है, आप जानते नहीं है शायद, भारत में तो हमें नहीं पता होंगे, भारत में भी कई ऐसे NGOs हैं और बाहर जाते हैं तो देखते कई एनजीओ है, इसकी किसका रहती है बंद कीजिए या तो साइलेंट पे रखिए उसको। तो आप बाहर के लोग कई जगहों में एनजीओ बनाते हैं, क्यों? क्योंकि कई देशों से बड़े बड़े फंड्स आते हैं, तो वो फंड्स आते हैं वो लोग डेवलपमेंट के लिए देते हैं। अच्छा आपके यहाँ गरीबी है, हम देते हैं, आप कीजिए। तो वो गरीबी के लिए फंड आता है, देश गरीबी रहता है, जिसके पास फंड आता है उसकी गरीबी दूर हो जाती है, बाकी सब चलता है। तो ये लाभ कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए इन चीज़ों को किया जाता है। तो शरीर के स्तर पर कार्य करते हैं, आत्मा और परमात्मा को सही दृष्टि से नहीं समझते। मूल बात यह है कि सच्चा परोपकार तब हो सकता है जब भगवान से जोड़ा जाए। लोग कहते हैं मानव सेवा ही माधव सेवा है, राइट? ये शब्द आपने सुने होंगे, हमसे भी किसी ने कहा मानव सेवा भी माधव, मानव सेवा ही मानव माधव सेवा है। हमने कहा जब तक मानव को माधव से जोड़ोगे नहीं तो माधव सेवा कहां से होगे? माधव को निकाल कर मानव सेवा, माधव सेवा कैसे हो सकती? सच्ची मानव सेवा है कि आप मानव को माधव से जोड़िए। हाँ ये जरूरी है, और इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए, उनको हमें जोड़ना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप किसी को खाना खिलाना चाहते हो और हमें बताया गया कि नहीं ये परोपकार नहीं करना है, तो पहले नहीं खिलाएंगे किसी को खाना, नहीं खिलाइए उसको, भगवान का प्रसाद खिलाइए, बस इतना करना। खिलाने में कोई कमी नहीं करनी है, खिलाना हमारे संस्था मंदिरों में खिलाया जाता है ना, प्रभुपाद ने संस्कृति तब से खिला रहे, कोई कमी नहीं है, लेकिन प्रसाद खिलाइए बस, ये चेंज करना। आप किसी को खिला रहे हैं तो प्रसाद खिलाइए। जैसे कभी कभी हम लोगों के अंदर बड़ी करुणा आ जाती है गरीबों के प्रति, भिखारियों के प्रति, आपको पता नहीं अनुभव है कि हमको कई अनुभव है। आप अच्छे स्थान पे जाओ, तीर्थ स्थलों में जाओ या धाम में जाओ, अचानक कोई व्यक्ति आएगा आपके पास कि बच्चे की बच्चा बीमार है, दवाई लेने आया था और बटुआ कट गया, तो अब दवाई लेने नहीं तो बच्चा मर जाएगा और जाने का खर्चा, आप अपना फ़ोन नंबर दे दो, आप दे दो मैं आपको भिजवा दूंगा, दिखने में भी ठीक लगता है, तो आपको लगता है हमारे पास तो करनी चाहिए मदद लोगों की, हम कर देते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, ये लो 1500 रुपये ले जाओ, कोई बात नहीं, बोले मैं आपको भिजवा दूंगा। आप लोग बड़े उदार हृदय से बोलते हैं, लेकिन उसकी चिंता मत करो, आप जाओ बच्चे को बचाओ। वो बच्चे को बचाने नहीं जा रहा है, वो 1500 लेकर उसकी बॉटल खरीदेगा, उसके बाद वो बाकी सारा चीज़ करेगा, फिर 3 दिन बाद वही करेगा खड़ा होकर, फिर इस बच्चे को, क्योंकि उसको पता है कि जो यात्री आते हैं 2-3 दिन रुकते हैं उसके बाद दिखाई देते हैं, फिर से वो वही खड़ा है। तो आपने तो सोचा कि आपने बड़ा परोपकार कर दिया, किसी व्यक्ति की जान बचा ली, कुछ नहीं किया, आपने उल्टा कर्म ले लिए, उसके कर्म के आप भागी हो गए, जो उसने पाप किया उसके भागी हो गए आप, क्योंकि आपने दिया पैसा, लो पियो शराब, लो मांस खाओ, लो गलत काम करो, तो ये परोपकार नहीं है, इसीलिए लिखा गया नरक में जाएंगे ऐसे। क्यों? क्योंकि वो केवल आध्यात्मिक गुरु बनने का प्रयास करते हैं, दिखाते हैं कि मैं आध्यात्मिक गुरु है, लेकिन अगर भगवान से नहीं जोड़ रहे तो कैसा आध्यात्मिक गुरु? इधर उधर की बातें कर कर प्रसिद्ध होना, धन कमाना, ये आध्यात्मिक गुरु का काम नहीं है, ये उत्तम अधिकारी का काम नहीं है। उसके लिए इस जगत की प्रसिद्धि मल के समान है, उसको कोई चिंता नहीं है इस जगत की प्रसिद्धि की, उसको वो भागता नहीं है, उल्टा वो प्रसिद्धि से दूर भागता। माधवेंद्रपुरी के लिए भगवान ने खीर चुराई, सारे जगत में प्रसिद्ध होने वाले हैं, तो उन्होंने ये नहीं कहा जैसे उनको पता चला कि हाँ चलो काट लाओ आसन लाओ देखो भगवान ने मेरे, वो भाग गए वहां से, चले गए कि कल को सारे सुबह में सब लोग मुझे प्रसिद्ध करेंगे, सब मेरा गुणगान करेंगे कि कितना बड़ा व्यक्ति है, कितना महान है, उसके लिए भगवान ने खुद खीर चुराई है, तो वहां से चले गए, वो रुके नहीं वहां पर। ये भाग इसलिए नहीं रुके, जैसे ही सुबह होगी सबको पता चलेगा और सब मेरा गुणगान करेंगे, मुझे इसकी आशा नहीं, गुणगान भगवान का होना चाहिए। तो ये जो धोखेबाज या नकल करते हैं उत्तम अधिकारियों की, उनकी गति ये होती। तो इस तरह से हमें सच्चे परोपकार को समझना चाहिए कि सच्चा परोपकार है भगवान। सो मानव सेवा माधव सेवा तब होगी जब मानव को माधव से जोड़ा जाएगा, बिना माधव के मानव सेवा हो नहीं सकती। किसी को कुछ दे देना, तो जैसे बता रहे थे ऐसे करते हैं कई लोग होते हैं, हमें ध्यान है हम वृंदावन में थे, तो हम जा रहे थे तो एक व्यक्ति ने हमें रोका कि आपको मराठी समझ में आती है, कहा आती है पता नहीं उसको कैसे बोला, महाराष्ट्र के रहते बम्बई में रहते, तो हमने कहा आती है, तो उसने हमसे मराठी में बात की थी, दिखाया उसका परिवार सड़क पे बैठा और सब अच्छे कपड़े पहने और अच्छी फैमिली, तो बोला कि और वो भी खुद अच्छा कपड़े पहना था और परिवार में पत्नी बच्चे सब थे 8-10 जन। उसने कहा कि ऐसे ऐसा हो गया, हम लोग वृंदावन आए थे लेकिन हमारा सारा सामान चोरी हो गया, हम जिस जगह पर रहे सब कुछ चला गया और अभी कुछ भी नहीं, मैं बच्चों को लेकर एक पत्नी को लेकर कहाँ जाऊँ इस समय में, तो मैं ऐसे ऐसे महाराष्ट्र में रहता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ट्रेन का मुझे मिल जाए पैसा, एक बार मैं अपने घर पहुँचाऊँ फिर आपको सारा आपका पैसा वापस कर दूँगा, ये वो आप मुझे पैसा दे दीजिए। पता नहीं क्यों हमको क्यों कहा, ये देखने की बात भी हो, हम लोग तो वैसे भी गाली लोग हमको उससे क्या है, हम लोग खुद बात कर रहे थे लोगों से, तो फिर भी हमें लगा कि बहुत अच्छा है, तो लेकिन हमें अनुभव हो चुके थे पहले के सब पता था, लेकिन दिखने में सब ऐसे जेन्युइन लग रहे, तो हमारे मन में आया कि भाई हो सकता है व्यक्ति सही भी हो, क्यों हम हर बार यही सोचे कि ये व्यक्ति गलत ही है, सही भी हो सकता है। तो हमने उनसे कहा कि ठीक है एक काम कीजिए, आप हमारे मंदिर आइए, अभी तो हम यहाँ पर तो सारा पैसा लेके तो नहीं चलते हर समय, जे आप मंदिर आइए हम व्यवस्था देखते हैं वहाँ पर, अकाउंट्स डिपार्टमेंट वगैरह में बात करके कुछ आपकी मदद करेंगे, आप आइए। तो उन्होंने बताया अच्छा कहाँ पर, हमने कहा यहाँ यहाँ मिलिए, हम इंतजार करेंगे, तो हम चले गए वहाँ पर, काफ़ी देर इंतजार करते रहे जेन्युइन, क्योंकि हमारे हृदय में भी आया कि भाई हम क्यों इस तरह से देखें कि हर व्यक्ति धोखेबाज है, हो सकता है उसको सही में नील हो और हम लोग धोखा समझ कर उसको नहीं कर रहे, तो हमने उसको बुलाया वो आया ही नहीं, आधा घंटा घड़े हुए जहाँ उसको कहा वो नहीं आए, तब हम समझ गए कि सही है ये गलत था, अगर होता तो जेन्युइन व्यक्ति आ जाता ना, हम जा रहे हैं, हमने कहा आ जाओ, हमने तो इसका हमारे साथ चलिए, तो बोले कि आप चलिए कहाँ जाने हम आते हैं, अगर उसको जेन्युइन नीड होती तो क्यों नहीं आता हमारे साथ, क्यों नहीं आया, हम तो मना थोड़ी कर रहे थे कि नहीं देखें। तो इस तरह से ऐसे हमें कई अनुभव भी हुए, पर मंदिर में थे हम तो मंदिर में आए और बताया कि देखो मेरे साथ मेरी यंग लड़की है और ऐसा ऐसा हो गया, मैं कहाँ जाऊँ, ये नहीं, आप अपना ईमेल आई डी दीजिए, आपका नंबर दीजिए, बैंक अकाउंट डिटेल दीजिए, कैलकाटा पहुँचते ही दे देंगे। सही में वो शुरुआत की अवस्था थी, हमें भी नए नए थे तो हमने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाके कहा नहीं ऐसा है कर दो, तो लोगों ने ठीक है क्योंकि आप बोल रहे हैं तो दे देते हैं, कहा दे दीजिए, उन्होंने दे दिया, उसके बाद नाच पर वो व्यक्ति दिखाई दिया कुछ होता है, तो बहुत अनुभव ऐसे है, तो इसलिए ऐसे हमें उत्तम अधिकारी की नकल नहीं करनी चाहिए। कृपया आगे बढ़िए, इस लोग को प्रतिबंध करना है,
स्पष्ट रूप से उल्लेखित है कि मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक तरह से देखे, इसका अर्थ यह हुआ कि वह पूर्ववर्ती आचार्य का अनुसरण करे जो प्रामाणिक शिक्षक है। इस प्रसंग में अनुपश्यति अत्यंत उपयुक्त संस्कृत शब्द है, अनु का अर्थ है अनुसरण करना और पश्यति का अर्थ है देखना, इस प्रकार अनुपश्यति शब्द का अर्थ यह हुआ कि वह वस्तुओं को उस रूप में न देखे जिस तरह वह अपनी खुली आंखों से देखता है। प्रतियुक्त पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करें, भौतिक दोषों के कारण आंखें किसी भी वस्तु को ठीक से नहीं देख पाती, कोई तब तक ठीक से नहीं देख सकता जब तक वह उसने किसी शेष स्रोत से सुनना रखा हो, वो सर्वोच्च स्रोत वैदिक ज्ञान है जो सर्वे भगवान द्वारा दिया गया है, वैदिक सत्य गुरु शिष्य परंपरा द्वारा भगवान से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास और व्यास से उनके कई शिष्यों तक आता है। पहले वेदों के संदेश को अभी लिखित करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि तब लोग अधिक बुद्धिमान तथा प्रखर श्रवण शक्ति वाले होते थे, वे प्रमाणित गुरु के मुख से मात्र एक बार सुनकर उपदेशों का अनुसरण कर सकते थे।
तो यहाँ पर आप देखिए कि फिर से परंपरा के महत्व को बताया जा रहा है। अब आप लोग इतने मंत्र पढ़ चुके हैं, आपने ध्यान दिया कि ये जो एक बात है जहां भी अवसर आ रहा है प्रभुपाद उस पर जोर दे रहे हैं, किस तरह कहां से सुनना चाहिए, कहां से प्रारंभ किया, भूमिका में, भूमिका में प्रभुपाद ने इस बात को कहा कि परंपरा से सुनना चाहिए शब्द प्रमाण। फिर उन्होंने ईश स्तुति में कहा, ईश स्तुति में कहा गुरु साधु शास्त्र चाहिए, फिर पहले मंत्र में कहा ईशावास से, फिर चौथे मंत्र में कहा और अब फिर यहाँ छठे मंत्र में गया और आगे दिया है। तो मतलब कैसे हर जगह पर प्रभुपाद ने ये समझा रहे हैं कि हमें जो ज्ञान लेना है वो परंपरा से लेना चाहिए, बिना परंपरा के जो ज्ञान दिया जाता है वो सही नहीं होता। गुरु सही प्रमाणित होगा तो ज्ञान हमें मिल जाएगा। अपने तो अनुपश्यति यहाँ पर दिया गया है कि जैसा कहा गया देखना कैसा है, अनुपश्यति जैसा बताया गया वैसे, यानी कहना चाहिए कानों से देखिए, आंखों से नहीं। भगवान को कानों से देखा जाता है क्योंकि सुना जाता है भगवान के विषय में। रुक्मिणी देवी ने सुना था कृष्ण के विषय में और सुनकर प्रेम उत्पन्न हो गया, तो इसीलिए ये सुनने की विधि है उसको बड़े ध्यान से हमें समझना चाहिए कि अनुपश्यति भक्ति अनुगमन करके की जाती, पीछे पीछे चलकर की जाती। शुद्ध भक्ति के जो परिभाषा है, क्या परिभाषा है कोई जानते हैं? शुद्ध भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति उत्तमा अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा धनावृतम अनुकूलेना अनुकूल पीछे पीछे चलकर अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम अनुशीलनम अनुशीलन मतलब अनुशीलन करना, क्या कहते हैं इसको? पीछे पीछे चलना। हाँ, तो भक्ति मतलब, शुद्ध भक्ति मतलब अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम अनुशीलनम। तो यहाँ भी अनुपश्यति, तो इसको समझना चाहिए कि क्यों हमें आचार्यों से गुरु से ही सुनना है। क्या हम सीधे सीधे भक्ति नहीं कर सकते, सीधे शास्त्र नहीं पढ़ सकते? अब ये ग्रंथ है ईशोपनिषद, आप जाइए कहीं पर भी खरीदिए और पढ़ लीजिए, क्या जरूरत है गुरु की? सीधे नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल नहीं, समझ में ही नहीं आएगा। इसके जैसे भी श्लोक आप लोग देख रहे हैं, अगर प्रभुपाद ने इतने अच्छे से समझाया ना हो तो क्या हमें ईशोपनिषद समझ में आएगा? दो पेज पढ़कर बाद में रख देंगे, बस हो गया, हो गई हमारी भक्ति। एक बार ट्रेन में जा रहे थे, एक लड़का वहाँ मिला, वहाँ पर था, बातचीत करने लगे, तो हम भगवद गीता पढ़ रहे थे, तो कुछ समय बाद उसने हमसे कहा कि मैं पढ़ सकता हूँ? मैंने कहा जी। उसने पढ़ा, दो तीन पेज पढ़े तो बोले ये तो बड़ी सिंपल है। तो हमने कहा हाँ सिंपल ही है, मतलब क्योंकि उसने पूर्व में कभी कोई भगवद गीता ली थी, उठाई थी, जो उसको समझ ही नहीं आई, एक दो पेज पढ़े और साइड में रख दिए। ऐसा होता है ना, बड़े बड़े विद्वानों के प्रवचन हैं, स्वामी फला फला आनंद जी या जो भी है, बड़े बड़े स्वामियों के प्रवचन लोग जाते हैं सुनने के लिए, और वो एक एक शब्द को, एक एक श्लोक को तोड़ मारो ऐसा घुमा फिरा के इतने एक एक शब्द के आपके देते हैं, व्यक्ति घूम जाता है और प्रवचन से बाहर आता है और उसको पूछा जाता है कैसा प्रवचन? बहुत बढ़िया, इतने विद्वान मैंने जीवन में नहीं देखे, बड़े विद्वान। अच्छा क्या कहा? वो तो मुझे पता नहीं लेकिन प्रवचन बहुत अच्छा था। कोई लाभ नहीं है प्रवचन, जो प्रवक्ता है उसकी विद्वत्ता का प्रमाण देने के लिए नहीं किया जाता कि कितना वो विद्वान है। प्रवचन जो श्रोता है उनकी स्थिति के अनुसार उनको ऊंचे जो सिद्धांत है वो समझाने के लिए सरल भाषा में किया जाता, जैसे प्रभुपाद ने किया। सारे ईशोपनिषद इतने कठिन है समझना, बड़े सरल भाषा में हम लोगों को समझाते। आपने पहले ईशोपनिषद पढ़ी थी? इसके पहले किसी ने समझ आए थे? कुछ नहीं समझ रहा, हम लोग कितने ऑनेस्ट हैं, कुछ नहीं समझ रहा। तो अनुपश्यति, तो हमें क्यों चाहिए गुरु से क्यों सुनना चाहिए, क्यों अनुपश्यति होना चाहिए? सबसे पहला, अगर हमें ऊंचे स्तर तक उठना है भक्ति के तो हमें गुरु का अनुगमन करना अनिवार्य है, क्योंकि जो ऊंचे स्तर पर है वो आपको ऊंचे स्तर तक उठा सकते हैं। सारे लोग कुएं में डूब रहे हैं, पानी में एक दूसरे को डुबाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। आपने देखा है कभी कभी दो लोग डूब रहे होते हैं, उसको बचाने जाए तो व्यक्ति उसके ऊपर चढ़ जाता है, वो भी नीचे जाता। तो अगर कोई अच्छा तैराक नहीं है तो क्या होगा, वो भी डूबेंगे सर। लेकिन जो ऊपर स्तर पर है वो आपको बचा सकता है। तो इसीलिए भक्ति के ऊंचे स्तरों तक इवॉल्व करने के लिए, पहुंचने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। दूसरा, हमारे मन में कई ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमें नहीं मिलता। हम लोग रात के समय ऊपर देखते हैं, तारे दिखाई देते हैं, तारे क्या है? कोई कहता है कुछ है, कोई कहता है कुछ है विज्ञान, कुछ कहता है नर्सरी, क्या है तारे? तो इनको समझने के लिए ऐसी कुछ चीजें जिनके हमारे जीवन में प्रश्न के उत्तर नहीं है। अभी हम लोग उस दिन पिछले शनिवार को चर्चा कर रहे थे, व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, बुरे लोगों के साथ अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। तो हमारे मन में प्रश्न है, हमें उत्तर नहीं मिलता क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, या और भी जीवन के कई उत्तर। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या हमारा जीवन कष्ट लेने के लिए बना? क्यों मैं सदैव सुखी नहीं रह सकता? क्यों हमेशा सुख मुझसे दूर जाता है? इस जगत में सुख क्या है इसको जान लीजिए। दो दुखों के बीच के अंतर को सुख कहते हैं, सही है ना? एक दुख चला गया, दूसरा आने वाला, हम लोग कितना सुखी हुए। दो दुखों के बीच का, जैसे व्यक्ति बीमार है अगर ठीक हो जाए तो वो सुखी नहीं है, सुख तो और बाद में आएगा। एक हमारा दुख चला गया, दूसरा नहीं है, मतलब एब्सेंस ऑफ मिजरी इज कंसीडर्ड एज हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड। दुख की अनुपस्थिति इस जगत में सुख मानी गई, लेकिन सच्चा सुख क्या है वो पता ही नहीं। जैसे अंधकार, अंधकार की कौन परिभाषा दे सकते हैं? प्रकाश का नाम होना, बस इतना ही। प्रकाश नहीं है तो उसको अंधकार कहा। लेकिन अंधकार इटसेल्फ डिफाइन करना मुश्किल है, अंधकार है क्या? तो शास्त्र पढ़कर अंधकार समझ में आता है कि कृष्ण से मुन्मुख हो गए, कृष्ण की परछाई पीछे अंधकार है। कुछ लोग आपको बताए ना, कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया है अंधकार। तो ऊंचे जो हमारे जीवन में प्रश्न है उनके उत्तर को जानने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। और फिर जो शास्त्र में कहा गया है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, जो सब जगह सबको समान देखता है इत्यादि, ये सब है। कोई एक उदाहरण तो चाहिए सामने, जैसे अभी आप लोग उदाहरण दे रहे थे कनिष्ठ मध्यम उत्तम सूत्र प्रकार में प्रभुपाद ने जैसे किया, तो हमें एक उदाहरण तो चाहिए सामने, नहीं तो केवल एक थियरी हो जाएगा। बड़ी बड़ी बातें, जो व्यक्ति सबको देखता है तो हमें लगेगा जो मतलब वो पूर्व काल में था आज नहीं है। हमारे सामने होना चाहिए जिसको देख कर हम कहेंगे हाँ हमें ये बनना है। अगर आपको भक्त बनना है तो एक अच्छा भक्त चाहिए ना सामने। आपको कभी कोई अच्छा पॉलिटिशियन बनना है तो आपके भी एक आइडियल होते हैं ना कि हाँ मुझे इसके जैसा बनना है। आजकल तो पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन होते होंगे किसी को। या किसी और फील्ड में जाए तो बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो व्यक्ति को लगे मुझे इसकी तरह बनना है। तो इसीलिए उदाहरण चाहिए हमें, जो शास्त्र में कहा, चलता फिरता शास्त्र चाहिए हमें सामने, तब हम शास्त्र को प्रमाणिक मानेंगे। नहीं तो शास्त्र हमारे लिए, हम लोग शुद्ध भक्त थे प्रहलाद महाराज थे, गुरु महाराज थे, उस समय की बात है, आज नहीं होते। नहीं आज होते हैं, क्यों नहीं होते? तो इसीलिए हमारे लिए चलता फिरता शास्त्र सामने चाहिए। तो उदाहरण इसीलिए गुरु हमें चाहिए, और साथ साथ शास्त्रों का आदेश है। भगवान ने भगवद गीता में क्या कहा, सत्य जानना है तो क्या करो? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। एक ऐसे गुरु के पास जाओ जिसने सत्य को देखा, तत्वदर्शी है। तीन उपहार लेकर जाने चाहिए एक शिष्य को गुरु के पास, नहीं तो ज्ञान नहीं मिलता। कौन कौन से उपहार है? नम्रता, जिज्ञासा और सेवा। हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है, अगर आप लोगों को याद तो तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तीन चीजें चाहिए तब हम ज्ञान ले सकते। तो ये शास्त्रों का आदेश है, इसीलिए हमें गुरु के पास जाना चाहिए। और इस चीज को स्थापित करने के लिए स्वयं कृष्ण ने गुरु को स्वीकार किया। क्या जरूरत है भगवान को स्वीकार करने की? जैसे जब रामचंद्र जी को लेकर गए दशरथ महाराज, जब उनकी विद्या आरंभ की जाए तो बैठे सामने, क्योंकि विद्या आरंभ होती है, राजा बैठ के देखता है कि मेरे बच्चे की विद्या आरंभ हो रही है। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि काम कीजिए आप जाइए। उसने कहा क्यों? बोले नहीं, आपके सामने नहीं होगी उनकी विद्या आरंभ। तो दशरथ महाराज ने कहा तो नियम है कि पिता के सामने होगी, मतलब आप वैसे भी कौन से नियम का पालन करते हो? दशरथ महाराज ने मतलब बोले खीर से बच्चे उत्पन्न होने का कहाँ का नियम है वे ना, तो आप लोग ज्यादा चिंता मत कीजिए जाइए। तो फिर वो चले गए, खैर गुरु कह रहे हैं। तो उसके बाद वशिष्ठ मुनि ने दंडवत प्रणाम किया, रामचंद्र जी को प्रदक्षिणा की और कहा कि आप हर बार ऐसा क्यों करते हैं? किसी व्यक्ति को चुनते अपने गुरु के लिए और फिर उससे सीख रहे हैं, आप जो सीख रहे हो तो सब आपने ही सिखाया हुआ है, आप तो सबके गुरु हैं। तो इसी तरह भगवान हालांकि सबके गुरु हैं, सारा ज्ञान उनसे आता है, लेकिन वो ये दिखलाने के लिए कि हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए या सच्चा ज्ञान जीवन की सफलता के लिए गुरु को स्वीकार करना है। कृष्ण ने शांति मुनि मुनि को स्वीकार किया, रामचंद्र जी ने वशिष्ठ मुनि, स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने गुरु स्वीकार किया, संन्यास जब उन्होंने लिया तो गुरु स्वीकार, सबसे पहले शिवपुरी को उन्होंने गुरु स्वीकार, क्या जरूरत है भगवान को गुरु स्वीकारने की, जो आदि गुरु हैं वो भी गुरु स्वीकार, ये दिखलाने के लिए हमारे जीवन में आवश्यकता है। तो इसीलिए हमें गुरु को स्वीकारना चाहिए। वैसे भी सीधे हम कृष्ण के पास क्यों नहीं जा सकते, एक प्रश्न आता है, आप एक इतना बड़ी बड़ी बात गुरु हम सीधे क्यों नहीं जा सकते, सीधे भक्ति करेंगे वो कौन सा स्तर हो गया, कनिष्ठ स्तर, सीधे भक्ति भगवान की करेंगे, कर नहीं सकते, क्यों, क्योंकि आप शुद्ध नहीं है, भगवान पूर्ण शुद्ध है, भगवान आपसे कोई चीज क्यों स्वीकारेंगे। भगवान ने बहुत स्पष्ट भगवत गीता में कहा मैं किससे स्वीकारता हूँ, जो भक्त है, पत्रम विश्वम फलम द्वयम् यो मे भक्त्या प्रयच्छति, भगवान ने केवल ये नहीं कहा किसी से भी स्वीकार, तो वो पूर्ण शुद्ध है। इस जगत में हमें किसी ऊंचे व्यक्ति तक पहुंचने के लिए किसी की पहुंच लगानी पड़ती है, आप बोलिए मैं नरेंद्र मोदी से मिलना चाहता हूँ, तो बस बस मेरी इच्छा है, नहीं मिल सकते आपको, कहीं ना कहीं कुछ करना है, बहुत मेहनत करें, पता नहीं कितने दिनों बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा और आप मिलोगे। तो जब इस जगत के किसी भी जरा से एलिवेटेड व्यक्ति से मिलने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, किसी के द्वारा जाना पड़ता है, तो फिर कृष्ण को आप ऐसे ही सीधे चले जाओगे। तो इसलिए हमें गुरु की आवश्यकता है। और गुरु कौन है, प्रमाणिक गुरु कौन है, चर्चा चल रही है तो इसमें ये भी हम लोग जान लें प्रमाणिक गुरु कौन है। सबसे पहले शास्त्रों का सार जानने चाहिए, गुरु को कहा जाता है, कोई भी व्यक्ति को गुरु स्वीकार नहीं करना चाहिए, राह चलते हैं हम लोग करते हैं, किसी से भी जाकर नहीं चर्चा कर सकते, आप थोड़ी ना पान वाले की दुकान पर जाकर चर्चा करोगे, बताओ भैया भगवद गीता में क्या कहा है, बोलेगा कि भगवद गीता में कृष्ण ने कहा चूना कहाँ लगाना चाहिए और कथा कहाँ लगाना चाहिए, उसका ही चर्चा है। तो इसीलिए उसको शास्त्रों का सार पता होना चाहिए। दूसरा चीज, भगवान का वो नम्र सेवक होना चाहिए, अगर भगवान का नम्र सेवक नहीं है वो गुरु नहीं हो सकता। शास्त्रों के सार को जाने, नम्र सेवक हो और आत्मसंयमी हो, उसको आत्मसंयमी होना चाहिए गुरु को, तो इसको हम गुरु कहते हैं। अगर वो नहीं है, और जैसे हमने बताया था कि जितना भी वो कहता है, जो भी कहता है वो दूसरों से उसने सुना होना चाहिए। एक अच्छा शिष्य एक अच्छा गुरु बन सकता है, अगर उसने खुद नहीं सुना तो दूसरों को क्या सुनाएगा, अच्छा शिष्य अच्छा गुरु बन सकता है, ठीक है। तो ये अनुपश्यति शब्द का अर्थ है, आगे बढ़िए।
इस समय शास्त्रों के अनेक टीका उपलब्ध है, किंतु उनमें से अधिकांश व्यास देव से प्रारंभ होने वाले गुरु शिष्य परंपरा में नहीं है, जिन्होंने पहले पर वैदिक ज्ञान का संकलन किया। श्री व्यास देव के अंतिम परम पूर्ण तथा भव्य प्रति श्रीमद् भागवतम है, जो वेदांत सूत्र का सहज भाष्य है। भगवद गीता भी एक कृति है जिसका प्रवचन स्वयं भगवान ने किया और व्यासदेव ने उसको लिपिबद्ध किया। ये अत्यंत महत्वपूर्ण शास्त्र है और ऐसी कोई भी टीका जो भगवद गीता या श्रीमद् भागवत के सिद्धांतों के विपरीत है अवैध है। उपनिषदों, वेदांत सूत्र, वेदों, भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत के मध्य पूर्ण साम्य है और किसी को वेदों के संबंध में तब तक किसी भी निर्णय तक पहुंचने का प्रयास नहीं करना चाहिए जब तक उसे व्यास देव की गुरु शिष्य परंपरा के सदस्यों से आदेश न प्राप्त हो जाए, जो भगवान तथा उनकी विभिन्न शक्तियों पर विश्वास करते हैं, जैसा कि श्री ईशोपनिषद में व्याख्या हुई है।
ठीक है, इसे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, इसे विस्तार से आगे का अंतिम पैराग्राफ पढ़िए ताकि पूरा हो जाए।
भगवद गीता 18:54 के अनुसार जो भले से मुक्त पर ब्रह्म भूत पर आती है
और प्रत्येक स्त्री को अपना ही भाई मानता है वह उत्तम अधिकारी का पत्ता सीखता है।
कौन सा श्लोक है? सबको समान मानता है समस्त सर्वेषु।
कैसे दृष्टि राजनीति को प्राप्त नहीं हो सकती जो सदैव किसी न किसी भौतिक लाभ के पीछे पड़े रहते हैं। जो व्यक्ति उत्तम अधिकारी के लक्षणों का अनुकरण करता है वह भले ही किसी दूसरे की बाहरी शरीर की सेवा या जैसे भौतिक लाभ के लिए गड़े लेकिन वह आत्मा की सेवा नहीं करता। ऐसे अनुकरण करता विकल्पी को आध्यात्मिक आध्यात्मिक जगत की कोई जानकारी नहीं मिल सकती। उत्तम अधिकारी भौतिक शरीर में ही जीवात्मा का दर्शन करता है और आत्मा के रूप में उसकी सेवा करता है। इस प्रकार भौतिक पक्ष को स्वतः ही सेवा हो जाती है।
तो यहाँ ये जो विशेषता प्रभुपाद ने पहले कनिष्ठ मध्यम उत्तर बता के फिर जो उत्तम अधिकारी की नकल करते हैं उन पर ज़्यादा जोर दिया है। अब हो सकता है ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए, हो सकता है। ठीक है, सो अभी हम लोगों ने चर्चा की तीन स्तरों की। हम लोग अपना स्तर कैसे निश्चित कर सकते हैं? हम कनिष्ठ हैं, मध्यम हैं या उत्तम हैं? अभी कनिष्ठ बोल रहे लेकिन मन में आ रहा शायद मध्यम। थोड़ी देर और रहेंगे तो उत्तम तक पहुंच जाएगा। तो हम अपने स्तर से ऊंचे कैसे उठ सकते हैं? ठीक है, अगर हम कनिष्ठ हैं मध्यम हैं जो भी हैं उस स्तर से ऊपर उठना है ना, उसी में नहीं बने रहना है, तो कैसे उठ सकते हैं? एक कनिष्ठ भक्त मध्यम भक्त कैसे बन सकता? भक्तों का संग लेकर। बहुत अच्छा, आप जी ने प्रारंभ उसी से किया था पहला बात। यस, हाँ, ऊंचे स्तर के भक्तों का संग करना। बहुत अच्छा, आप जा सकते हैं। और कैसे हम कनिष्ठ से ऊपर जाएंगे? शास्त्रों का अध्ययन करके। बहुत अच्छा, भक्तों की सेवा करके। हाँ, क्योंकि केवल भगवान भगवान की सेवा में और मेरा भगवान नहीं, भक्तों को भी महत्व देना सीखना चाहिए। तो अगर हम, हाँ जी, गुरु के माध्यम से, तो अगर हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें आपस में प्रेम करना सीखना चाहिए, सहयोग की भावना, मैत्री की भावना। तो भक्तों से, भक्तों की सेवा, भक्तों से अच्छा आचरण, ये हमारे स्तर को ऊंचा कर सकता है। ये जो सीख रहे हैं उस पर आचरण करें। बहुत अच्छा, ये केवल क्लास तक ना सीमित रहे कि क्लास में सब कहा ये कहा, उत्तम अधिकारी कौन, मध्यम अधिकारी कौन, और बाहर जाकर कब, तो क्लास के लिए छात्र मुझे हो गया सब। जब हम लोग ग्रुप के बाहर जाते हैं जो यहाँ का ज्ञान है यहीं छोड़ कर जाते हैं, नहीं, जीवन में पालन करना चाहिए। बहुत अच्छा, और कोई?
श्रद्धा
और विश्वास किसमें हो?
भगवान के
प्रति श्रद्धा और विश्वास बढ़ाना चाहिए। बहुत अच्छा,
प्रभु जी के भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहिए और फिर श्रद्धा बढ़ाना चाहिए।
हाँ, हमारी जो बहुत प्रामाणिक इच्छा होनी चाहिए कि हम कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, बड़ी तीव्र इच्छा। इस समय हमारी इच्छा बाकी चीज़ों को प्राप्त करने की बहुत है ना, किसी को मान सम्मान की इच्छा है। एक भक्ति में आने पर भी हमारी इच्छाएं बनी रहती है। समय सोचिए आप भक्त हो गए तो सारी इच्छा चली गई, इच्छा शून्य हो गया है, हो ही नहीं सकता। सारी इच्छाएं बनी हुई हैं। हम लोग जब भक्ति में आते हैं तो थोड़े समय के लिए हमारी इच्छाएं बदल जाती हैं, हमें लगता है भक्ति भक्ति सब, और फिर उसके बाद उन्हीं इच्छाओं को हम भक्ति के द्वारा पूरा करने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें कामना है प्रसिद्ध होने की, अब हम भक्त हो गए तो हम प्रसिद्ध प्रचारक बनना चाहते हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति। माइक हमारे सामने ही होना चाहिए तो बड़ा दुख हो जाता है। फेस्टिवल के दिन गाने को नहीं मिला मुझे तो फिर लाभ ही क्या मेरे गाने का, आरती कौन करेगा? कई मंदिरों में क्षमा चाहते हैं, रिकॉर्ड भी हो रहा है, लेकिन फिर बताना चाहते हैं कि कई हमारे बड़े बड़े मंदिरों में उत्सव के दिन आरती अंदर कौन करेगा, उसके लिए बड़ी होड़ लगती है। बाकी देव पुजारी करता रहे कोई बात नहीं, लेकिन उत्सव के देव भी मंदिर भरा हुआ है, सब लोग देखेंगे। वो लोग भूल जाते हैं कि कोई भी पुजारी को देखने नहीं आ रहा है, भगवान को देखने के लिए आ रहे हैं। वो मंदिर क्यों आते हैं? भगवान को देखने आते हैं। तो ये हम क्या करते हैं, धीरे धीरे भक्ति के द्वारा अपनी सारी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं, प्रसिद्ध होने की कामना, कभी कभी धन कमाने की कामना। तो इसीलिए व्यक्ति पथभ्रष्ट हो जाता है, तो उसका उद्देश्य हो जाता है बस मैं अच्छा प्रचार करके इतना पैसा कमा लूं। उधर कई कई बड़े बड़े कथाकार हैं, तो उनकी कथा के लिए आपको इतना पैसा देना, नहीं तो वो आएंगे ही नहीं। कोई लाभ नहीं है ऐसे प्रॉपर के जैसे प्रोफेशनल कथाकार से हमें कथा सुनने का कोई लाभ नहीं। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है, वो किस लिए बैठा है व्यास आसन पर? क्योंकि उसको पैसा मिल रहा है, 5 लाख 10 लाख रुपए दे रहे तब वो बैठा है। तो उसकी चेतना आपकी चेतना में प्रवेश करेगी, इसलिए शुद्ध भक्त से सुनना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसकी चेतना आपकी चेतना में प्रवेश करेगी तब भक्ति बढ़ेगी। तो इसीलिए ये चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो कैसे हम ऊपर जा सकते हैं, हमें रोज ये सोचना चाहिए रात को सोने से पहले कि आज मैंने ऐसा क्या किया जिससे मैं एक कदम कृष्ण की ओर आगे बढ़ा, और अगर कुछ नहीं किया तो रो लेना चाहिए कि आज मैंने कुछ नहीं किया, और कल के लिए प्रण लेना चाहिए कि मैं कुछ करूँ। तो इसीलिए हर रोज जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर समझाते थे कि हमें रात को सोने से पहले जूतों से मारना चाहिए, कुछ प्रैक्टिकली मत लीजिएगा, घर वाले बोलेंगे क्या हो गया, इसको अचानक बंद करो, ये क्या कर रहा है। अब बोलो रात को सोने से पहले जूता लिया मार रहे, वो बोलेगा इसको कुछ हो गया, कल से इस बात नहीं जाना। जूते से मारने का अर्थ है सोचिए मैंने क्या किया दिन भर, और जो गलत काम किए उसको दूर करें, मारे अपने आप के मन को कि नहीं कल से मुझे नहीं करना। और सुबह उठ के क्या करना है, 100 बार झाड़ू से मार, प्रैक्टिकल मतलब लिटरली नहीं। तो इसीलिए इसका अर्थ क्या है कि हमारे जो भी हृदय में मन में गंदगी है उसको हमने दूर करने का क्या प्रयास किया। जरूरी नहीं है कि आप बहुत निकट आ गए कृष्ण के, आपने उसको बहुत बड़ा काम कर दिया आज, हमने छोटा सा एक काम, क्या मैंने एक भक्त की मदद कर दी, क्या मैंने किसी भक्त के भक्ति के गुण को देख कर उसका गुणगान कर दिया, किया भी नहीं किया, छोटी चीजें। जरूरी नहीं है कि हम सोचे मैंने आज बहुत प्रचार किया, 1000 लोगों को लेक्चर दिया, ये मेरे लिए कृष्ण के, वो भी ठीक है, लेकिन आपने क्या आपके साथ रहने वाले किसी भक्त से अच्छा आचरण किया, क्या किसी भक्त के हृदय को दुखाया। प्रभुपाद के पास एक समय बहुत सारा धन आया, और जब प्रभुपाद को पता चला कि इस धन को लाने के लिए एक भक्त का हृदय को तोड़ना पड़ा था या उसको कुछ हर्ट हुआ है, प्रभुपाद ने सारा धन वापस कर दिया। क्यों? उन्होंने कहा कि भक्तों को ज्यादा महत्व दिए। श्री प्रभुपाद के भक्तों ने वेस्ट वर्जीनिया में एक मंदिर बनाया है प्रभुपाद के लिए, पैलेस ऑफ गोल्ड, प्रभुपाद का पूरा बहुत सुंदर मंदिर। तो जब वो बन रहा था तो प्रभुपाद गए देखने के लिए, तो उनमें से कुछ भक्तों ने पूछा कि प्रभुपाद हमने पढ़ा भागवतम में कि कृष्ण के जो महल थे उसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, ज्वेल्स, ज्वेल को हिंदी में कहते हैं रत्न जड़े हुए थे, रत्न जड़े महल था उनका। तो हमने सुना है कि उनके खंभों में इत्यादि रत्न होते थे, हम लोग भी यहाँ रत्न लगाए थे, उनका अच्छा भाव था कि हम प्रभुपाद के लिए बना रहे हैं, दुनिया का सबसे बढ़िया स्थान होना चाहिए, आज भी बहुत लोग देखने जाते हैं पैलेस ऑफ गोल्ड। तो उन्होंने कहा इसको हम बनाए कैसे, तो प्रभुपाद ने उन लोग की ओर देखा और कहा कि मेरे रत्न मेरे भक्त हैं, मुझे किसी रत्न की आवश्यकता नहीं। तो ये प्रभुपाद समझा रहे हैं कि किस तरह हमें भक्तों का आदर सम्मान या भक्तों से आचरण करना चाहिए। तो हर रोज ये सोचिए कि मैंने आज किस भक्त की मदद की, किस भक्त की सेवा की, किस भक्त को भक्ति में आगे बढ़ने की सहायता की, ये हमें सोचना चाहिए। तो हमें बदलाव अपने अंदर लाना चाहिए, ठीक है। और कोई बताएंगे क्या करना चाहिए, बहुत अच्छी बात। यस बोलिए, बार बार फिर से भौतिक भावनाओं में हम गिर ना जाएं। अब हमें अच्छा अवसर मिल गया है, पद मिला है, तो इस पर आगे बढ़े, पीछे नहीं जाए। बहुत विनीत भाव से सेवा करनी चाहिए, किसकी, अपनी या भगवान की, भक्तों की। बहुत अच्छा, ध्यान से जब करना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए, साधना में बहुत गंभीर होना चाहिए। बहुत अच्छा, और कुछ कोई कहना चाहते हैं? बस बहुत बदल गया, हृदय को खोलना चाहिए। यस, क्योंकि हृदय में हमारा जो शरीर है इसकी रचना इस तरह हुई है कि जो भी अंदर रह जाता है सड़ जाता है, सही है ना? तो आप अगर कुछ बातें भी अपने हृदय में रखते हो तो वो सड़ जाएगा, हृदय को भी गंदा कर देगा, इसलिए निकाल देना चाहिए। हम लोग अच्छी अच्छी बातें जो हृदय में आती है वो तो सबके साथ शेयर कर लेते हैं। जी मुझे लग रहा है कि कैसे कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो बुरी बातें आती हैं वो दबा देते हैं, और वो बताना नहीं करो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, जो बुरी बातें हम तो दबा देते हैं। हमें हृदय को खोलना चाहिए, कुछ हरेक के सामने नहीं, और जिसके सामने खोले उसको भी न्यूज टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने जाके अपने हृदय की बात कही, सच में मेरे हृदय में वासनाएं बहुत बढ़ रही हैं, पता नहीं कैसा करना चाहिए, अगले दिन सारे भक्तों को बता जाके मिले, उनको पता, किसी को बताना नहीं लेकिन उनको बता रहा कि इस भक्त का हृदय में ऐसा ऐसा, वो जाके दूसरे को किसी को बताना नहीं, केवल तुमको बता, वो केवल तुमको बताते बताते सारे जगत को बता। श्री प्रभुपाद के समय एक सन्यासी थे जिन्होंने सन्यास छोड़ दिया किसी कारण से, कुछ हुआ मंदिर में और मंदिर छोड़कर चले गए। ये बात केवल प्रभुपाद को पता थी और प्रभुपाद के सेक्रेटरी को कि क्या हुआ है, किसी को नहीं पता था क्या हुआ, लेकिन प्रभुपाद के सेक्रेटरी ने बता रहा किसी को बताना नहीं, बता रहा किसी को बताया, सारे मंदिर में बात फैल गई कि उसने क्या किया। और जब प्रभुपाद को पता चला तो प्रभुपाद बड़े क्रोध में उन्होंने बुलाया सेक्रेटरी को, प्रभुपाद ने कहा कि तुमने उसके वापस आने का रास्ता बंद कर दिया। जैसे मान लीजिए हमने कुछ गलती की और हमें पता है कि यहाँ किसी को नहीं पता है, और फिर बाद में गलती को स्वीकार के दंड लेकर फिर व्यक्ति फिर से भक्तों के बीच में आना चाहता है तो आ जाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि नहीं किसी को नहीं, एक दो को पता था, ठीक है मैंने दंड ले लिया मैं आ गया। लेकिन अगर हमें पता है कि सबको पता है तो हम कैसे आएंगे वापस? प्रभुपाद ने कहा कि आपने उसका वापस आने का मार्ग दिया। तो देखिए कैसे भक्तों से हमें आचरण, तो हृदय खोलना जरूरी है, लेकिन जिसके सामने खोले उसको भी संभालना चाहिए कि वो जाकर दुनिया में पब्लिश नहीं करते इसको, ठीक है? तो इस तरह से हम अपने स्तर को बढ़ा सकते हैं, और स्तर को बढ़ाना आवश्यक है। हमें कनिष्ठ बने नहीं रहना चाहिए, मध्यम और मध्यम से उत्तम बनना, ये प्रभुपाद की इच्छा है, ये प्रभुपाद का आंदोलन है, ठीक है? सातवां श्लोक शुरू करें, समय हो गया था। ऐसे इतने धीरे धीरे हम लोग जाएंगे तो हमें नहीं लगता है कि हम मिशन पूरा करा पाएंगे, खैर कोई और आके फिर कराएंगे जितना हम करा सकेंगे, लेकिन प्रयास तो कर रहे हैं। हम रोज सोचते हैं कि कल से कंटिन्यू दो दो तीन तीन श्लोक एक दिन पे करके पूरा हो जाएगा, लेकिन होता ही नहीं है। यहाँ पर आकर पता नहीं आप लोग के उत्साह इतना है कि वो जो एक श्लोक के आगे मुश्किल से बढ़ पाते, ठीक है? कल चर्चा करेंगे साथ में। साइलेंस साइलेंस शांति शांति, आप माइक पे बोलिए ताकि सबको पता चले कि आप बोल रहे हो, ये सबको लग रहा है क्लास खत्म हो गई हम लोग बात कर सकते हैं।
तो क्या हमें ये समझना चाहिए कि जब तक प्रचार नहीं है तब तक कनिष्ठ तत्व नहीं,
जब तक प्रचारक नहीं है तब तक कनिष्ठ तत्व है, जरूरी नहीं। कनिष्ठ भक्त वो है, ये निश्चित प्रचारक नहीं करता है, क्योंकि उसकी श्रद्धा भी कोमल होती है और ये वेदों का ज्ञान उसको ठीक से नहीं होता है। श्रद्धा कोमल है मतलब आज यहाँ है कल वहाँ जा सकता है, मायावादियों के साथ जा सकता है, तो इसलिए उसको वो प्रचार नहीं कर पाता है। लेकिन ये निश्चित नहीं है कि जब तक हम प्रचार नहीं करें हम ऊपर नहीं आ सकते, क्योंकि मध्यम अधिकारी का लक्षण क्या है? वो भेद करता है। कैसे भेद करता है? भगवान से भेद करता है, भक्तों से मित्रता करता है, बालिश जो है जो उसके नीचे के उनके ऊपर कृपा करता है। तो हमें इस स्तर पर आना मध्यम के लिए कि हम केवल भगवान नहीं सबको मान देना शुरू हो, जरूरी नहीं है प्रचारक ही बने। और दूसरी दृष्टि में हर भक्त को प्रचारक बनना ही चाहिए, लेकिन प्रचारक क्या है ये समझिए, केवल व्यासाश्रम पर बैठकर प्रवचन देना ये प्रचार नहीं है। आप मंदिर को साफ रख रहे हो ये प्रचार है। हम लोग बाहर जाकर लोगों को प्रचार कर करके मंदिर में लाए कि आइए आइए, और पता चले मंदिर आए सारे धूल गंदगी पड़ी हुई है, तो लोग कहेंगे आप अपने भगवान को इतनी गंदगी में रखते हो तो आप लोग क्या शुद्ध हो गए। मंदिर को साफ रखना प्रचार है, बहुत अच्छा प्रसाद बनाना प्रचार है। हम लोग संडे का प्रोग्राम लोगों को बुलाए, संडे को लोग आए और पता चला कि कुछ खाने को अच्छा नहीं बना, तो अच्छा प्रसाद बनाना प्रचार है। हर चीज कृष्ण भावना मृत में प्रचार है। विग्रह का सुंदर श्रृंगार करना प्रचार है। अभी लोग आते दर्शन के लिए मंदिर में, और अगर सुंदर श्रृंगार ना हो, हमारे मंदिरों की विशेषता क्या है, भगवान का श्रृंगार बहुत ऊंचे स्तर का होता है। पहले क्या होता था, पहले के मंदिरों में आज भी आप जाइए तो कई मंदिरों में छह छह दिन भगवान की ड्रेस नहीं बदल दी जाती है। पुजारी आते लॉक लगा के चले जाते, जब कोई आया तब लॉक खोला, आरती कर दी, कोई ठीक से नहीं। लेकिन जब प्रभुपाद ने सिस्टम को किया तो देखिए कितने बदल गए, सब लोगों ने फॉलो करना शुरू किया। तो ये भी प्रचार है, केवल भगवान के चित्र। इसलिए प्रचारक बनने का अर्थ ये नहीं है कि केवल कोई प्रवचन करे, प्रचार सब में आता है। ठीक है, हरे कृष्णा बोला भी प्रचार है। सड़क पे जाते जाते लोगों को बोलिए हरे कृष्णा बोलिए, बहुत अच्छा है, ये भी प्रचार है। हाँ गौरव को बोलिए। अच्छा अभी आपको ये पेपर्स दे रहे हैं, इसको हमने सोचा था समझाएं कि, लेकिन आज सबको देर हो रही है, सब लोग ऑलरेडी उठ के जा रहे हैं, तो इसको कल कल दे देते हैं। कल प्रारंभ में शुरुआत में हम समझाएंगे कि ये जो ये ओपन बुक के एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, और इसमें आपको कैसे लिखना है, क्या क्या लिखना है, किससे आपको सही मार्क्स मिलेंगे, किससे गलत, ये कल सुबह में पहले समझा देंगे, फिर क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, तो जो लोग लेट आएंगे वो लोग बाद में आकर हमसे मत पूछिएगा, जो जब लेट आए ये फिर से समझाएंगे। हम सब सुबह समझाने वाले हैं तो समय पर आ जाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण।